benda pun dia jadi mungkin sebab dia apabila
प्रवेश सब लोग उठ करके खड़े होकर के उसका अभिवादन किया। ब्रह्मा जी उसके पिता हैं इसलिए उठे नहीं, बल्कि ब्रह्मा जी को अभिवादन करते हुआ। और शंकर जी वहां पर बैठे हैं, उन्होंने उसका कोई अभिवादन नहीं किया, वो चुपचाप बैठे हुए हैं। इसको बड़ा क्रोध है, अरे ये देखो तो संबंध में हमारा ये पुत्र लगता है, हमने अपनी कन्या का विवाह इससे किया, सती जी का विवाह दिया, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से मैंने दिया, नहीं तो मैं नहीं देता। ये बंदरों की आंख वाला और स्मशान में रहने वाला, भूख पिशाच में रहने वाला, सब समय अपवित्र बना रहने वाला, भस्म लगाता है शरीर में, और इसके परिकर लोग हैं जितने, वो भूत पिशाच हैं, किसी के तीन पैर हैं, किसी से एक ही पैर है, किसी का पेट लंबा, किसी का पैर मोटे सा और पेट एकदम लंबा, किसी का कुछ बेदाव सूरत के, उनके यहां रहता है। मैंने क्यों दिया अपनी लड़की को, मैं पछताता। ये बंदर जैसा मकट जैसा आंख वाला टिमटिमा रहा है आंख को, और मैं यहां पर आया इसका पिता तुल्य, और हमको आकर के संभाषण नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, देखो तो इसको सदाचार कर दीजिए। और शंकर जी बोले भाई चुपचाप बैठे हुए, हां भी नहीं कर रहे, कुछ भी उत्तर नहीं दे रहे, इसलिए उसका क्रोध और बढ़ गया, एकदम आग बबूला हो गया। देखो तो मैंने इतना कहा तभी कुछ उत्तर नहीं देता, तभी इसको अकल नहीं आती कि हमको प्रणाम करो, मैं कहूं कि आ जाओ तुम हमको प्रणाम करो, अभिषेक की क्या करो, तभी सदाचार वर्जित सब समय पवित्र जाओ, बस उठाया पान पानी और उठा करके जल मंत्र पूर्ण करके कहा जब इसको विसंपात दे, खबरदार ऐसा ना करें, शिव सब समय मंगल में है, आप उनको मत, इनको वो मानने में जाओ, देवताओं के लिए जो यज्ञ होता है उसमें इसको भाग नहीं मिलेगा, न मिले मैं ऐसा अभी संपादन सब समय उपेक्षित रहे, और ये कह करके सभा छोड़ करके वो चला गया। तो नंदीश्वर वहीं पर बैठे हुए थे शंकर के परिकर और शंकर जी के सेवक, तो ये देखो तो बिना किसी कारण के ये अभिसंपात इनको दे दिया प्रभु को, और ये चुपचाप बैठे हुए हैं, न इनको शोक है न गम है न प्रसन्नता है, भोले भाले ये उनको ऐसे अभिसंपात कर दिया, बस उनको क्रोध आ गया। तो ये बकरे की बुद्धि कही, बकरा सब समय भोगों में लिप्त रहता है, एक एक साथ में चार चार पांच पांच बच्चे हो जाए करते हैं, बस ये बकरे जैसी इसकी बुद्धि है तो बकरे का मुंड भी इसका हो जाए। ये लोग वेद रूपी रज्जु में बने हुए थे, वेद रज्जु रूप बने मकान देते रज्जु में बनते रहते हैं, ये समझते कर्म से ही हम सुखी रहेंगे, ये शरीर ही मैं हूं, ये आत्मबुद्धि है, शरीर में मैं ये हूं, ये बुद्धि कभी नहीं होनी चाहिए। किंतु मूर्ख लोग जो है कर्मों के परतंत्र लोग हैं, ये शरीर को ही मैं मान करके और इसी में बंधे रहते हैं, और इसी के कोटि कोटि जन्मों तक जन्मांतरों तक इसी में, इसी का नाम है भाव। शंकर जी का नाम भाव माने उनका ये इसलिए नहीं, भाव को दूर करने वाले हैं इस रूप में, जन्म जन्मांतर तक तुम लोग कर्म की रज्जु में वेद के पुष्पित वाक्यों में तुम लोग बनते, पुष्पित वाक्य माने देवताओं का वजन करने से आदमी सुखी रहता है, चतुर्मास करने से अजर मर होकर के वो सुख होता है, बस पर तक उनकी पहुंच। इसके बाद वो फिर वहां से लौट आते हैं। इस तरह से उनको सुनता तो इतने में भृगु जी बैठे थे और आप सब बैठे थे जिन्होंने दक्ष प्रजापति का पापों का अनुमोदन किया था। देखो तो इसने ब्राह्मण कुल के लिए सबके लिए ऐसा भी संपाप कर दिया। और उनसे राणा उन्होंने कहा जो शंकर की उपासना करेगा वो पाखंडी होंगे, पाखंडी पाखंडी भूत पिशाचों की पूजा करेंगे और ये पाखंडों से अपने फल का काम फल हो गए। पाखंडी माने क्या? मदिरा पान करेंगे, खोपड़ी लेकर के गुड़ भूनेंगे और जितने प्रकार के हैं सदाचार इत्यादि से वंचित रहेंगे और वो लोग अंत में नरक में जाएंगे। अब ये सुन करके चारों तरफ में सन्नाटा हो गया। नंदीश्वर ने कहा कि देखो तो ये फिर उल्टा फिर ये इसने अभी संपाद किया। उन्होंने कहा ये ब्राह्मण लोग वेद ऋषि में बैठ कर्म चक्र में फंस करके सब समय ये ब्राह्मण लोग भी जो उनके बातों का अनुमोदन किया है हाथ में भिक्षा का पात्र लेकर के घूमेंगे, वेद का अध्ययन करेंगे, वेद उच्चारण करेंगे तो उसका मर्म नहीं समझेंगे जो भगवान का उपासना करनी चाहिए। इसलिए ये लोग कभी भी धनी नहीं होंगे और ये लोग भिक्षा पात्र लेकर के चारों तरफ में तो तपस्या करेंगे, व्रत करेंगे, वेद पढ़ेंगे और यजमानी के ऊपर में निर्भर रहेंगे और होमियोपैथी उनका पेट भी नहीं पड़ेगा, बस पेट पूजा करने वाली ये लोग सबको देख करके सभा स्थगित हो गई। ये बातें सब ठीक है, वेद पढ़ते हैं भगवान का भजन नहीं करते, ऐसे ब्राह्मण लोग हैं देखेंगे उनको दक्षिणा मिलना चाहिए, शिष्या का धन भी ले लेंगे, मतलब तो पापी व्यक्ति भी दान करता है तो उसमें पहुंच जाएंगे। अब वेद मंत्र उच्चार भगवान का भजन नहीं करेंगे शुद्ध रूप में, देहात में बुद्धि रखते हैं और शंकर जी के भजन करने वाले जो भगवान को नहीं मानते विष्णु से विरोध करते हैं वो लोग भी इसी टाइप के, वो शंकर जी को भगवान मानते हैं, दो पुरुषा पूजा करते हैं, मदिरा पान करते हैं और ये शिव हम करते हैं। अंत में पार्वती जी खट से उनका मुंड काट लेती है और शंकर जी उसको कूद करके मार उठाते हैं। ये पाखंडी क्यों? अरे कब तक तो शंकर जी तुम्हारे उपास थे, पिता थे और आज शिवम हो गया तो पार्वती जी उनकी क्या लगेगी? मैं शंकर बन गया तो वो खर्जा बन जाएंगी। ऐसे कुबुद्धि वालों को काट करके मुंड मारा है। क्रोध शांत किसी का नहीं हुआ, शंकर जी चुपचाप देखे जिस थाली ऐसी है काल ऐसा प्रबल है वो शांत होकर के चले गए। पार्वती जी सुना, सती जी ने सुना उनको भी कर दू। कुछ दिनों के बाद में धीरे 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 बैमन से बढ़ता गया। कुछ दिनों के बाद में उस समय तो आयु हजारों लाखों वर्ष की होती थी, प्रचेताओं ने 10 लाख वर्ष तपस्या की, अब उनकी आयु कितनी होगी? अभी प्रचेता काफी शायद आएगा हो गया
नहीं आएगा
आएगा 10 लाख वर्ष उन्होंने तपस्या की। तो ये अभिसंपात होने के बाद में फिर अपने अपने स्थानों में सब लोग पहुंच गए, प्रजापति बुलाने में उसने तब से कभी सती को अपनी बेटी को बुलाया नहीं, वो सबसे अधिक तैयारी थी। इधर में बात हुई कि जब नहीं बुलाया और पढ़ता गया तो एक समय इसी बीच में रामचंद्र जी का जन्म हुआ, आविर्भाव और रामलीला चल रही थी, सीता के साथ में उनका विवाह हुआ जनकपुरी। इसके बाद वहां लौटे और राज्याभिषेक के बदले उनको वन गमन करना, सीता लक्ष्मण को लेकर के चले गए, चित्रकूट से चले गए दंडकारण्य। वहां पर सीता जी की चोरी हो गई, अपहरण किया गया, रावण ने अपहरण किया। अब रामचंद्र के विरह में कांतों को करके पशुओं से वृक्षों से पूछ रहे हैं कि आज सीता कहां गई, तुम जानते हो है कौन ये परब्रह्म कृष्ण ही है। अब ये भूल गाले बन करके उनके विरह में रो रहे हैं। शंकर जी उसी समय में रामचंद्र जी के दर्शन के लिए अपने इष्ट देव के दर्शन करने के लिए आए। दंडकारण्य में रामचंद्र जी के आंखों से आंसू की धारा गिर रही, पड़ते हुए सीता को खोज रहे हैं, हिरणों से गले लग जाते हैं, वृक्षों से पूछते हैं, गुदावरी से पूछते हैं। शंकर जी ने देखा, देख करके बड़े प्रसन्न होकर उनको चारों तरफ से प्रदक्षिणा की, परिवार प्रभु ऐसी आपकी लीला जो कि ब्रह्मा और सभी लोग देखे प्रमुख हो जाए, मोहित हो जाए, बस उनको दूर से प्रणाम किया। सती जी ने कहा, जैसे प्रियतम आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? हाँ, तो मैं अपने इष्ट देव को प्रणाम कर रहा हूं। तो ये इष्ट देव दशरथ के पुत्र हैं ना, आपके परम ब्रह्म राम नहीं है जिनकी उपासना करते हैं? मैं तुमको बताया था ना, तुम भूल जाती हो, संदेह नहीं करना चाहिए। मैं ठीक अपने प्रभु को ही, यही हमारे प्रभु इष्ट देव है, इनको परब्रह्म है, इनको मैं प्रणाम करता हूं। कहते इनको पता नहीं परब्रह्म है, पता नहीं इनकी स्त्री को कौन धारण करके ले गया है, और उन्होंने क्यों ले जाने दिया यदि परब्रह्म है तो? उनको पता नहीं ये राउंड ले गया, मैं तो जानती हूँ ये राउंड ले गया। तो ये साधारण मेरे ये राजकुमार दशरथ के पुत्र है ना परब्रह्म है, परब्रह्म है तो इनको मोह कैसा हो गया? इनको तो मोह नहीं होना चाहिए। शंकर जी ने थोड़े से मुस्कुरा दिया, कहने का तात्पर्य गुरु के बातों को अविश्वास मत करो, और भगवान के संबंध में कोई भी अविश्वास मत करो, दोनों गुरु जी के प्रति अपराध है और भगवान के प्रति अपराध है, इसका बात भयंकर परिणाम होता है। संदेहात्मा विनश्यति, उसका विनाश हो जाता है संदेह। गुरु जी की अवज्ञा, उनके बातों पर अविश्वास कभी नहीं, खबरदार करो। इन्होंने यही किया, हमको तो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है जैसे ये परब्रह्म, परीक्षा ले लो तुम्हारे यदि ऐसी बात है तो वो ठहर गए और ये आगे बढ़ गए प्रणाम करके। एक वर्ष परीक्षा छाया में बैठ गए, उनके लिए प्रतीक्षा कर, और उन्होंने सोचा कि परीक्षा क्या लें, बस उन्होंने सीता जी का रूप बनाया, जिसमें सीता जी का पाठ हुआ था ठीक वैसा ही सुंदर रूप बनाया और उनके सामने गई, यहाँ पर राम विलाप कर रहे थे सीता सीता करते। उन्होंने देख करके भी नहीं देखा उनके तरफ, दूसरे तरफ में और उन्होंने देखा नहीं मुझे, नहीं तो हमको तो प्रिया ना करके और हमको पकड़ लेते। इसके बाद रामचंद्र जी दूसरे तरफ में गए थे, दूसरे तरफ में भी गई, तीसरे तरफ में गई, उधर भी गई, जिधर रामचंद्र जी उड़ रहे हैं और ये उनके सामने जाकर खड़े होते, आप तो देखे। अंत में रामचंद्र जी ने उनको प्रणाम किया, भगवती देवी शंकर जी किधर है, आप अकेली क्यों घूम रही है? हाँ जी, कैसे जान गया? ओ कर्तव्य परब्रह्म है, दूसरा तो जान नहीं सकता था, जो मैंने सीता जी का ठीक वही रूप बनाया और कहा उनको पकड़ने के लिए आते, प्रिया प्रिया कर करके गले में न पड़ जाते, किंतु ऐसा तो किया नहीं। ओ ये फिर उनको छुप करके प्रणाम किया, छुप करके प्रणाम किया तो देखा जो सीता राम और लक्ष्मण तीनों साथ, जिधर देखते हैं उधर में सीता राम सीता राम सीता राम, आंख उनके बंद हो गई और रक्ति की भांति जमीन में गिर गई, प्रभु हमारा। इतने में जब भी आंख खोल करके देखती हैं सामने से देखेंगे वही राम, हार सीते वो कहां गई, हमको छुप करके बिलाप कर परीक्षा दिया ना, क्या परीक्षा लेती है, आपने जो कहा वो ठीक, अरे ये तो फिर मुझको झूठ बोल रही है, देखो तो गुरु मुझे से झूठ बोलना चाहिए और पति से, मैं इसका रूपी हूँ, झूठ बोलती हूँ। तो गुरु से झूठ बोलने वाले को क्या होना चाहिए? माने गुरु के तत्व पर विश्वास नहीं जो अंतर ज्ञानी है, इसलिए गुरु के साथ में झूठ मत बोलो, कोई भी चीज छिपा करके मत रखो। हम यही करते हैं। तो ये सती जी का थोड़ा सा अपराध के लिए इतना हो गया, शरीर छोड़ना पड़ा, तो हमारी क्या दुर्गति होगी? इसलिए समझ बुझ करके भजन करो, गुरु के प्रति ऐसी दृढ़ श्रद्धा। गुरु भी वैसा होना चाहिए, शंकर जैसा। गुरु तो कुछ जानता नहीं है, उसको भगवान मान लिया, अंतर जानी मान लिया तो होगा? बहू के पेड़ को आम का पेड़ मानो तो फल मिलेगा कभी? इसलिए गुरु गुरु होना चाहिए और शिष्य भी शिष्य होना चाहिए। आजकल इसकी कमी होती है, शिष्य भी वैसा है। लाख लाख गुरु मिले किंतु शिष्य एक नहीं मिलता, और लाख लाख शिष्य मिलता है गुरु एक नहीं मिलते, बड़ा मुश्किल है। तत्व ज्ञान से सपन्न भगवान की भक्ति को करने वाले ऐसे लोगों का मिलना बहुत कठिन है। इसलिए यदि हम एक छोटा सा घड़ा खरीदते हैं, 5 पैसे का घड़ा, तो बाजार में बजाते हैं उसको, खन खन कर रहा है, खन खन कर रहा है, खन खन करता है तो मत लो, और ठन ठन करता है चलो उसमें पानी ठहरेगा। यदि 5 पैसे की घड़े को हम यदि ऐसा बाजार को कर दे, तो गुरु जी के चरणों में हम आत्म निवेदन करते हैं, अपना जीवन सर्वस्व उनके चरणों में डाल देते हैं। वो आदमी सदाचारी है कि व्यभिचारी है, लंपट है कि लोगों को ठगने वाला है, अर्थलोलुप है, न भगवान का सचमुच में भक्त है, कुछ तत्व ज्ञान जानता है कि नहीं, शुद्ध भक्ति का आचरण करता, ये तो थोड़ा सा देखोगे कैसे हम जानेंगे? अरे भाई जीव जो जिनको जाति ना पाइया बहरे पानी है। अरे 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष हमको करो, देखो अपने आप जैसा होगा वैसा मालूम हो जाएगा। कि कैसे हैं, अपनो रूप है ना, क्या है वो, तब पता चलेगा। एक दिन में पता नहीं चलेगा। इसलिए ऐसी नौबत न हो कि पीछे से उनको क्या करने की आवश्यकता। इसलिए गुरु ऐसा नहीं करने चाहिए। एक कहा जाए तो पानी पियो तो
छान के
छान कर और
गुरु करो जान
कर और गुरु करो
जान कर
जान करना नहीं क्या। एक आदमी कह रहा है देखो सब ब्रह्म है, मान लेंगे ब्रह्म है तो तुम ब्रह्म है, तो ब्रह्म तो कभी जलते नहीं है। थोड़ा सा एक आग ले लो लकड़ी में जलाकर वो उनको मुख में दो, जल्दी जलते नहीं है तो कह दीजिए ब्रह्म है, हम ब्रह्म है। सोहम माने मैं वही हूं ब्रह्म हूं। देखो तो परीक्षा करते हैं सोहम ब्रह्म के तो लक्षण है ना, सरासर समय ज्ञान में बना, कभी मरता नहीं कभी जन्म लगता जन्मता नहीं, संसार स्पर्श नहीं करता, वो तो ब्रह्म है। तो यदि ब्रह्म है तो देखो तो ब्रह्म तो कृष्ण है, तो गोवर्धन को कानी उंगली को धारण कर दिया, उसके ऊपर में 5 मन का बोझ दे दो, और कृष्ण ने 20 पान किया उनको भी थोड़ा सा 20 दे दो, ये ब्रह्म है वहां है। एक समय ऐसे ही कोई आए कहे सोहम सोहम सोहम, तक तक करने लगे, कहीं उनको पकड़ लो तो पकड़ करके और उसके मुख में आग लगा दो, तो भागने का नहीं भागते क्यों, कृष्ण तो भागे नहीं, वो तो ब्रह्म थे, तो तुम क्यों भाग रहा है, और मैं भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म, हमसे डरने की क्या जरूरत है। ऐसे लोग सब गुरु हैं, लोगों को धोखा देने के लिए मुड़ा करके और भय संघर्ष और सोहम सोहम, ये पाखंडता है। कृष्ण ही एकमात्र पर ब्रह्म है, भागवत उनको कहता है, गीता कहते हैं, वेद पुराण उपनिषद, जीव कैसे ब्रह्म होगा, ब्रह्म का पास हो सकता है। इसलिए समझ बूझ करके सभी गुरु के लिए कर्मकांड में जो फंसे हुए हैं वो कैसे दूर हो सकते, जो तत्व ज्ञान के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा अपने वो अत्यंत तीक्ष्ण धार वाले चूहे से जुड़ा होता है, उसकी आसक्ति संसार को दूर कर दे और भगवान के चरणों में उसकी आसक्ति को लगा दे, ऐसे गुरु। वेद शास्त्र पढ़ने पर भी यदि भगवान के प्रति उनकी ममता प्रीति नहीं है, भगवान का भजन नहीं करते तो शूद्रकुल में पैदा हुआ भी काला पुरुषा व्यक्ति भी की भांति यदि हो तो वो वैसा पत्र ज्ञानी हो तो शरीर से संबंध नहीं आत्मा से संबंध वो ये सब का विचार होना चाहिए। तो जहां विचार नहीं होता तो ऐसे होता है तो शक्ति जी को उनमें थोड़ा सा मोह हो गया, भ्रम हो गया, एक तो उनकी बात मानी नहीं जे ये पर ब्रह्म है और दूसरी बात उनसे झूठ बोली। शंकर जी बहुत दुखी हो, उन्होंने कहा जैसे ये तो हमारी इष्ट देवी का मूर्ति बनाया, अपने रूप को बनाया, तो बाहर से मेरी आराध्या देवी मैया हो गई, माता जी हो गई, इसे इनके साथ में इतनी उचित व्यवहार नहीं होगा। अब बैंक हमने हमारे लिए भी नहीं बैठेंगी, माँ जैसे पूजनी होती है ये हमारी इष्ट देवी सीता जी हो गई, इसलिए इनकी मैं सब समय पूजा करूंगा। मन मन संकल्प कर या सीता जी से कहा, सती से कहा नहीं, आकाशवाणी से पुष्प दृष्टि भी उनके ऊपर में कहा जैसे आपके अतिरिक्त ऐसी प्रतिज्ञा कोई नहीं कर सकता। सखी ने कहा जाए तो आपने कौन सी प्रतिज्ञा की, अब उन्होंने मौन धारण किया, किसी बोले भी नहीं, ऐसा मौन हो गए, आश्रम तक पहुंचे कोई बात नहीं हुई। जब आश्रम में पहुंचे तो सामने में पहले तो सखी जी इनको आसन दे करके बैंक तरफ में बैठती थी पूजा इत्यादि कर रहा है, आसन करके खुद ही उठ करके वो आसन उठा करके सामने बैठा दी बैठी है पढ़ा दी है और उनकी पूजा हुई। ऐसे ही अब तो बड़ी दुखी हो गई, इन्होंने उसको त्याग कर दिया इस शरीर से और समाधि में 10,000-20,000 वर्ष बैठने लगे। उन्होंने सोचा इस शरीर से इनका हमारा संबंध नहीं है, मैं इनकी सेवा नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने सोचा ये शरीर को जरूर त्याग करना है। इतने में दक्ष प्रजापति के यहाँ में यज्ञ हो रहा था, सबको बुलाया, शंकर को नहीं निमंत्रण मिला, सब अपने स्त्रियों के साथ में विमानों में चढ़ करके जा रहे थे, प्रयाग में जा रहे थे, प्रयाग में यज्ञ हो रहा था, सब लोग जब जा रहे थे हिमालय की तरफ से होकर के ही जा रहे थे। उन्होंने देखा कि जो समस्त देवताओं की स्त्रियां जा रही, हमारी बहनें सब जा रही हैं, तो इनको बड़ा क्लेश हुआ। किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं, आप सब जगह निमंत्रण, हमको तो बुलाया नहीं पिताजी। किंतु देख करके उनके अंदर में लोभ हो गया कि मैं भी चलूं, मैं भी चलूं। शंकर जी से पूछा मैं जाऊं, उन्होंने कहा कि कैसे जाएगी, पिता के घर में गुरु जी के यहाँ भगवान मंदिर में बिना बुलाए जाना चाहिए, ये बात ठीक है, किंतु यदि शत्रुता हो तो नहीं जाना चाहिए, वो हमको अपना शत्रु मानता है, इसलिए तुम जाएगी तुम्हारा अनादर करेगा, हमारा अनादर करेगा, तुमको जाना उचित है। शंकर आदेश नए दे गए और ये शरीर उनके लिए भार हो रहा है, छटपट छटपट करने लगी। शंकर जी के मना करने पर भी बार बार पूछ रहे हैं, शंकर जी मौन हो, बड़ी दुखी होकर के कभी घर से बाहर जा रही है, कभी इधर आ रही है, कभी बाहर जा रही है, आप सबको देख रही है, पत रहा नहीं गया, अत्यंत खुबकार मारती हुई क्रोध से घर करके और घर से निकली और निकल करके पैदल भी चल दिया पिताजी के तरफ। शंकर जी ने नंदी को बुलाया और सब लोगों को बुलाकर इसके साथ में जाओ श्रृंगार से, इसको सब अच्छी तरह से कर करके अच्छी तरह से, मेरी बात नहीं मानो, बस उनको बैग की सवारी दे दी और सब लोगों ने सजा भजा करके बोले। वहां गए तो जितनी बहने हैं देख रही हैं कि इनके तरफ में कोई नहीं आ रहा है, महिलाएं कोई नहीं आ रही, केवल मैया बेटी बेटी का वो भी अधिक नहीं, पिताजी को आए नहीं, देख करके भी खबर क्या बने, डर रहे हैं कि पिताजी हमारा भी आदर नहीं करेंगे, इसको तो त्याग कर दिया, देख करके इनको बड़ा दुख हुआ। जब मंडप में गई वहां देखा कि शंकर जी को कोई भी स्थान नहीं इसमें है, क्रोध से फुफकारने लगी, अजी जी ये तो बड़ा पाषंड है, मैं इसके शरीर से मैंने मेरा जन्म हुआ है, इसलिए इस शरीर को अब मैं नहीं रखूंगी, मैं शरीर को भी छोड़ दूंगा। ये कहकर के यज्ञ मंडप में ही जहाँ पर स्वाहा स्वाहा जबकि इत्यादि का चल रहा था वहीं पर बैठ गई और एक योगासनी से शरीर से ही अग्नि निकली और उसको एक मिनट में जला करके यह लेकर के शंकर के जो वर्ण उनके साथ में गए थे उनको बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने यज्ञ को तहस नष्ट कर दिया, यज्ञ को जब इस प्रकार से खत्म कर दिया, उजाड़ दिए सब और कुछ बात विवाद होने लगा। भृगु जी ने कुछ ऐसे मंत्र को उच्चार किए जिससे कि परस्पर वहां से कुछ निकल करके और वैसे ही देवता लोग और युद्ध हुआ उसमें उनको मार। जब चले गए शंकर के पास में भाग करके तब शंकर जी की क्रोध भागने निकली और उसे वीरभद्र का जन्म हुआ। बड़ा और बड़ा विकट आकर के यज्ञ को ध्वंस करके भृगु के दाढ़ी उखाड़ दिए, जो हंस रहे थे उनको दांत तोड़ दिए, उषा इत्यादि। और जो ब्राह्मण लोग यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करते थे उनके बातों का अनुमोदन कर रहे थे, किसी को नोच लिया, किसी की नाक काट ली, किसी के कान काट लिए, इस प्रकार से अंग भंग करके यज्ञ को ध्वंस करके और दक्ष प्रजापति का सिर काट करके और अग्नि में स्वाहा कर दिया। बस यज्ञ समाप्त हो गया अपने आप। इसके बाद में शंकर को बड़ा क्रोध हुआ। धीरे 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 ब्रह्मा जी आए, विष्णु को साथ में लेकर के कुछ दिनों के बाद में उनको मनाया। वो तो थोड़े ही कोई असंतुष्ट है। इसके बाद में बहुत तरह से अब यज्ञ को समाप्ति हो करके और यज्ञ ठीक हो जाए आप ऐसे कर दें, नहीं तो ये परंपरा बहुत खराब हो जाए। उनके कारण से ये कौन वस्तु तो उसको पहले तो जी लाया है। शंकर जी उन लोगों के साथ में आया, अच्छा तो देखो जो कोई सामने मिल जाए उसका सिर ले आओ, मैं जोड़ दूंगा जी जाएगा। बाई चांस वही बकरा मिला चलता हुआ, कौन राम छागर, राम छागर होता है गांधी जी जिसका दूध पीते थे, वो बकरा
लंबे लंबे दाढ़ी
लंबे लंबे उनकी दाढ़ियां होती हैं, बस वो मिल गया जिससे दुर्गंध हमके शरीर से निकलता रहता है, बस वही मिला। बस उनके गणों ने उनके सिर काट लिया और ले आकर के शंकर जी को दे दिया। शंकर जी ने उसके ऊपर में रखा, दे बस जीवित हो जाओ, बस आपका करना था कि वो जीवित हो गया। और बकरे का मुंह शरीर, जो लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं, संसारिक कर्मों में लगे रहते हैं, उनका यही गति। मनुष्य शरीर देखने में किंतु पशु है, धर्म ही नहीं ना पशु भी इसमें, विशेष करके बकरे का ही काम है। जो लोग शरीर को अपना में नहीं मान करके भगवान का भजन करते हैं वो लोग ये लोग आदर है, नहीं तो केवल पशु बकरा नहीं बनना। प्रजापति यही करता था, प्रजापति माने क्या है, प्रजा को उत्पन्न करने में चतुर है, बेटा बेटी उत्पन्न करने में कितनी हजार कन्या, कितने हजार लड़के, कितने क्या, गोविंदा जी की कृपा से किसी को पढ़ा दिया तो वो साधु बन गए, तो उनको बिगड़ करके अपनी संपाद कर जाओ, एक जगह में तुम रह नहीं सकता, तो उसको तो दंड होना ही था, बस बकरा बना दिया। अब वहां जो केश पाओ उसको तरह तरह से सकता, जब करने लगा तो ये प्रसन्न तो खाएं, बस प्रसन्न होकर के गया था। अब यज्ञ करो, यज्ञ किया, फिर उसने विष्णु और ब्रह्मा इत्यादि सब संतुष्ट होकर के यज्ञ की पूर्णाहुति इत्यादि। तात्पर्य क्या, यदि देह में ये पाकर के मनुष्य जन्म है भगवान का भजन था, गुरु रूपी कर्ण था, भगवान की कृपा रूपी अनुकूल गायी थी, और ना ये शरीर हमारा किसी भी दूसरे जन्म में भजन नहीं होगा, इस मनुष्य शरीर में ही भजन हो सकता है। साढ़े तीन हाथ बस यही दरवाजा एक मात्र, इसमें जो संसार के भोगों में लग गए अंत में उनका बड़ा भारी अनिष्ट हो रहा है, इस चीज को समझना चाहिए, इसलिए उसको मनुष्य से बकरा बना दिया। और सती जी का देखो, जैसे उस जन्म में शंकर जी से अलग हो गई हरी कथा इत्यादि, इसलिए गुरु पर संदेह नहीं करना चाहिए, भगवान पर संदेह नहीं करना चाहिए, गुरु क्योंकि तो ऐसे ही हुआ ना, जो लोग पढ़े हुए हैं रामायण इत्यादि, राम और लक्ष्मण जी को नाग ने पकड़ रखा था मेघनाद के बाण से, और वो लोग बेहोश जैसे पड़े हैं, नारद जी जाकर के कहा गरुड़ जी से, अरे जल्दी से पहुंचो, तुम्हारे प्रभु के ऊपर में संकट आया। प्रभु के ऊपर में संकट आया तो प्रभु प्रभु कैसे आ करके जब यहाँ आए, उनको देखते ही नागों ने उन राम को और लक्ष्मण जी को छोड़ दिया, जरूर सचेतन हो गए। अब उनके अंदर में शंका हुई, हमको देख करके ये सब भाग गए और पर ब्रह्म हमारे इष्ट देव और उनको छोड़ करके नहीं वो भागे तो तुम ये हमारे प्रभु कैसे हैं, संदेह हो गया। वो नवलीला कर रहे हैं, इनको ये ज्ञान नहीं, बस उनको शंकर जी के पास में गए जो वो राम राम है कि नहीं। उन्होंने कहा कि उसको भी फुर्सत नहीं, अभी मैं जा रहा हूं जरा ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास में गए, पहले ब्रह्मा जी के पास, कहते फुर्सत नहीं, तो जाओ शंकर। शंकर जी के वो बल पर चढ़ करके कहीं जा रहे थे, अरे भाई हमको समय में अभी जरा काफ को सुन दिए थे, उसके पास नहीं चले जाए। कौआ पर पक्षियों में सबसे निम्न जाति का कौआ होता है, मैंने उसका अहंकार दूर करने गरुड़ भी था राजा पक्षियों के और उनके यहाँ भेज दिया। वो उनके पास में गए, उनको दंडवत प्रणाम, पहले नम्रता होनी चाहिए। गुरु के पास में जाओ कैसे, मैं खुद जानने वाला हूँ, इस तरह से मत जाओ। नम्र बन करके गुरु के पास में अहंकार सब छोड़ करके, विद्या का अभिमान, रूप का अभिमान, उच्च कुल में जन्म होने का अभिमान और ये चार प्रकार, जन्म ऐश्वर्य सुपर श्री थी, धन का भी, धन का अभिमान और है अधिक सबसे। एक काले कूड़े थे कि शादी नहीं हो रही और उसके पास में कोटिपति है तो क्या कर लेगा, खरीद लेगा परम सुंदर, बड़े बड़े विद्वान उसके यहां जाकर के हाथ जोड़ेंगे, अरे आपके समान सुंदर और कोई नहीं, किस लिए रुपये के रूप से उसको 2-4 हजार रुपया दे दिया, स्टॉक कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, बड़े बड़े एम ए पी ए पी एच डी लोगों को अपने यहाँ मौका रख दिया, बड़े बड़े मारवाड़ी है ना, देखने में भी प्रूफ है सब कुछ है, किंतु लक्ष्य उनके घर में बैठ गया, बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े धनी सब लोगों को अपने यहाँ पैसे में नौकर रख देते हैं। धन जो है इसका अभिमान सबसे बड़ा है, इसलिए भक्त लोग धन को संग्रह ही नहीं करते हैं। दुर्लभ है ना आत्ममृत्यु ना, ये आत्ममृत्यु का ऐसा समझ करके उनसे शिक्षा लेकर के भगवान का भजन, दीन ही होकर के धन रहने पर भी भगवान का धन समझे, उसे भगवान की सेवा करो, उच्च कुल में जन्मे हो तो उसका लाभ उठाओ, भगवान की सेवा में सबको लगाओ, इस प्रकार से ऐसा होकर के भजन करना चाहिए, ये सब शिक्षाएं इसमें। अब आगे की जो बता हूं आप लोग सुबह चाहिए सुनिए, हमने बहुत समय
का प्रयोजन कुछ ओर से अपनी रुचि को समाहित करने के प्रयास में है, उसके पीछे कोई दबाव नहीं है, कोई महाराज क्यों, अगर दबाव रहेगा तो रुदन हो सकता है, विकलन नहीं हो सकता, और इस विकलन साधन सुखा योगेश्वरेश्वर योगेश्वरेश्वर कृष्ण साधन विकलन सुखा समाता के द्वारा एक कण भी यदि अब कहां मिलेगी, धरती की कण अरे की मोती कहां मिलेगा, किसी शीत में धरती कहां मिलेगी, किसी शब्द में क्या संदिग्ध पांचलास्त्र और लाल धरती सूत्र और संदिग्ध धरती सूत्र इनके पास करने से भक्ति तो नहीं होगी, भक्ति विषय तुम्हारी संख्या का पोषण हो जाएगा, भक्ति नहीं हो सकती नारद पंचरात्र पढ़ने से, सामने भक्ति सूत्र पढ़ने से, नारद भक्ति सूत्र पढ़ने से, और फिर बोले घटना भक्ति कब होगी, बोले भक्ति होगी संत की संगत से, संत की कृपा से, और आई हुई भक्ति की महिमा और महिमा का बोध हो जाएगा, दंडित भक्ति सूत्र नारद पंचरात्र की मीमांसा से, उनकी समीक्षा से। इसलिए महाराज कहते हैं कुछ भी न सत सक हो, कोई न कह सके कुछ भी, तो भी अगर कान में भागवत का एक श्लोक पड़ जाए, एक श्लोक पड़ जाए सब देता है, उनके अंतर खिले हुए ज्ञान कुंडली का मकरंद उसमें विद्यमान है, इसलिए उस सुगंध से तुम्हारे भीतर भी छिपा हुआ जो कहीं फौड़ा है वो अपने नियम से निकल करके आशियाने से निकल करके जब गुंजार करेगा तो उसके सच्चनों के संघात से नीचे का दबा हुआ मकरंद इसलिए महाराज कहते हैं कि परंतु स्वधर्माचरण विष्णु भक्ति हो, अपने अपने स्वधर्म के स्वधर्म नियम से पहचान कहाँ होता है? जब सब और चित्त, सब और चित्त हो जाए तब जीव का आनंद जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप बताता अप्रमेय भाव प्रतिपादन करके इस अनिर्वचनीय असंबोधन स्वरूप की प्रतिष्ठा करता है। उस प्रतिष्ठा में यदि तुम्हारी निष्ठा बन जाए तो वो तुम्हारा स्वरूप ही स्वभावभूत होकर के आनंद प्रतीत हो जाता है। ये सांख्यकार कहते हैं, ये वैशेषिककार कहते हैं, ये योगी जनों की अनुभूतियां कहते हैं। इसलिए बंधुओं, ये भक्ति का संदर्भ साधारणतया उपेक्षा करने से, साधारणतया दहेज उपाय के उसका विषय नहीं है। ये समर्थन किया है, इतना उसका आयोजन किया है, उसके लिए इतना आत्मचेतना का, आत्मचेतना में उसका अनुभव